Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
हम जब कहते ही है कि ओमकार ही सब कुछ है तो ओमकार ही सब कुछ है. अब सर्वात्मता जब सिद्ध करनी है ना तो ये जो ओम है यही जगत है उसके सब प्रूफ्स आपको बताने पड़ेंगे. हाँ, सब कुछ कागज देना पड़ेगा. अब कुछ अपना जो बयान है, अपना जो केस है, वो जब आप बता रहे हैं तो आप केस लड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं? सब प्रूफ्स देते हैं ना. पूछिए, सब प्रूफ देते हैं और प्रूफ के साथ क्या देते हैं? पहले जो बुक में पहले जो कुछ हो गया उसके भी प्रूफ देते हैं, उसके भी नंबर्स देते हैं कि भाई ये यहाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था इसलिए मैं सच्चा हूँ. तो जगत के बारे में हमें अभी बताना है आपको कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय जो है वो पंच महाभूत जो है मेरे तक का वो ओम है. वो आपको अभी बताना है शास्त्र को. उतना ही नहीं, ऐसा दूसरे कहाँ कहाँ बताया है, कौन से उपनिषदों में बताया है, वो भी कलम आपको देनी पड़ेगी. ये एक ही पार्ट हो गया, अब ये दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है. ये उपनिषद दो बाजू से चल रहा है. अब ये ओम उसी समय पे अक्षर पर ब्रह्म भी है वो भी आपको बताना पड़ेगा. तो ये उपनिषद में दो विचारधाराएं चलेगी कि ओम परमात्मा किस प्रकार है, वही ओम जगत किस प्रकार है, और फिर आपको पता लगेगा कि ये परमात्मा है, वही ओम है, वही जगत है. ये ओम ताने बाने की जैसे घुल मिल जाता है. जैसे आप शर्ट है, आप एक शर्ट को देखते हैं. जब आप शर्ट को देखते हैं तो उसकी एक राइट स्लीव होती है और लेफ्ट स्लीव्स होती है. तो ये दाई और बाई जो स्लीव्स होती है, जो बाहें होती है, वो दाई जो बाहें है वो बाई हो सकती है. हाँ, ये राइट हैंड की जो स्लीव है वो लेफ्ट हैंड की हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? यहाँ उपनिषद कहते हैं हो सकती है. कैसे? उसके भीतर जो धागा चल रहा है, जो ताना बाना है, वो एक ही है. जब उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है जगत रूप से तो दाई और बाई ये सब हो जाती है. जब सिर्फ ठोस उसका एक सूत्र निकाल दिया और यहाँ पे सूत्र रख दिया तो ये जो सूत्र है, ये जो पूरा कपड़ा है और कपड़े में से निकला हुआ नाम आकार है, वो तीनों एक ही है. कपड़ा बनाने वाला जो है, कपड़ा बनाने के लिए जो संकल्प वो कई किया है, वो संकल्प रूप जो पूरा ताना बाना जो है, वो संकल्प करने वाला कोई चेतन, कपड़ा बनाने वाला कोई चेतन तो होगा ही. ज्ञान तो चेतन में ही हो सकता है. तो ये कपड़ा बनाने वाला कोई चेतन व्यक्ति, उसने बनाया कपड़ा और ये धागा, सब एक ही है. ये बहुत ही सरल है. तो ये एकीकरण कैसे हो रहा है वो अब हम उपनिषद में देखेंगे. तो यहाँ कहा तस्य उपव्याख्यानम. किसका उपव्याख्यान है? अक्षर का, ब्रह्म का. तो बोले ब्रह्म का उपव्याख्यान हो ही नहीं सकता, वाणी से ही नहीं प्रदर्शित हो सकता, उसका उपव्याख्यान नहीं कर सकते. ओंकार को माध्यम बना के ही परमात्मा तक जा सकते हैं. उपव्याख्यान याने दृष्टांत दिया है भाष्य में भी कि कोई गवर्नर को मिलना चाहता है तो ए जो है, उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है, पीए है, वो गवर्नर के पास है. तो गवर्नर के पास जाने के लिए, गवर्नर को मिलने के लिए माध्यम कौन सा होगा, निकटता किसकी है? तो भाई गवर्नर के साथ आप किसको ढूंढेंगे? गवर्नर को मिलना है तो कहाँ, किसको पहले ढूंढेंगे? गवर्नर को नहीं ढूंढा जाता. आप वो माध्यम को ढूंढेंगे. हाँ, फोन लगा के 10 लोगों को पूछेंगे कि भाई गवर्नर के पास का आदमी कौन है भाई, हु इज द नियरेस्ट वन टू हिम, उसका मुझे संपर्क करा दीजिए, तो बात बन जाएगी. तो हमारी जो व्यवहार में भी जो सर्च है, व्यवहार में भी जो शोध है, वो कौन सी है? कोई बड़े आदमी को मिलना है तो उसके पास की व्यक्ति को ढूंढना. बस ऐसे ही ये ब्रह्म क्या है, बहुत बड़ा है. हाँ, महान, अणोहो अणियान महतो महियान. अब उसे ढूंढने चले हैं, उसे मिलना है तो उसके पास वाला कौन है भाई? निश्चित कोई शरीर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर तो मरण धर्म है, उसके पास वाला उसके जैसा होना चाहिए। आप इतना सोचिए कि कोई गवर्नर के पास वाला उसका पीए होगा, वो सिर्फ 10वीं क्लास पास होगा, क्या होगा उसकी डिग्री? अरे भाई, बहुत अच्छी सी डिग्री चाहिए। इनफैक्ट गवर्नर की जो डिग्री है उससे ज्यादा उसकी चाहिए, तो ही वो इसको संभाल सकता है। ठीक है, और ऐसा ही होता है जीवन में। आप देखिए, ये जो पर्सनल एडवाइजर्स जो होते हैं बड़े आदमियों के, वो उनसे ज्यादा डिग्री वाले होते हैं। क्यों? तो ही उनको पता है, वो ऐसे ही रखते हैं, तो ही ये मेरा ध्यान रख सकेगा, मैं कितनी बाजू सोच सकूं। मैं यहां गलत हूं तो ये पोर्टफोलियो इसको दे दिया कि आप यहां गलत है, आईना दिखा देते हैं, या आईना दिखाने का ही काम करते हैं। तो व्यवहार में भी मुख्य व्यक्ति से उसकी जो ध्यान रखने वाली व्यक्ति है उसे ज्यादा समर्थ रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वो मुख्य व्यक्ति को उसकी जो गरिमा है वो बनाए ही रखनी पड़ती है। इसीलिए तो ये ब्रह्म की गरिमा, और ब्रह्म ऐसे वैसे को रखेगा अपने पास? निश्चित शरीर जो मरण धर्मा है उसे अपने पास नहीं, उसका उसकी परछाई भी नहीं आ सकती है, तो शरीर तो माध्यम नहीं है। मन उसके पास है तो बोले मन भी उसके पास नहीं है। क्यों? ये तो सतत परिवर्तनशील है। मन संकल्प विकल्प है, मन में नाम और रूप का ही बारे में मन सोच सकता है, और परमात्मा नाम और रूप से परे है, यानी मन भी नहीं हो सकता उसके निकटतम। बुद्धि है तो बोले बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि वही निर्णय ले सकती है जो नाम रूपात्मक विषय और वासना जनित है। बुद्धि और निर्विकारी के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती, नहीं तो अब तक तो हमने निर्णय कर ही लिया होता, हम यहाँ आते ही नहीं ना, कोई भी निर्णय कर लेते थे। तो बोले बुद्धि भी उसके पास नहीं आ सकती है। ये जो आत्मा है, ये जो गवर्नर है, उसने अपने पीए में शरीर मन और बुद्धि को निकाल दिया है, अब कौन बचा भाई? तो यहाँ उपनिषद कहते हैं कि इसके लिए शास्त्र और गुरु के पास जाना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। शास्त्र ने, गुरु ने कहा कि ये ओम है, तो अब ये ओम है, बात खत्म हो गई। तो अब सोचिए ये ओम क्यों है, ये ओम हकीकत में क्या है? तो देखिए, ये परमात्मा जो है वो कैसा है? वाणी के अगोचर है। हा? वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती, यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भी वर्णन किससे हम करते हैं? हम जो यहाँ बोलते हैं कि वाणी पहुंच नहीं सकती है, ये किसके माध्यम से कहा? हमने वाणी के ही माध्यम से कहा, यानी वाणी थोड़े तक तो पहुंच ही सकती है, पूरा नहीं पहुंच सकती है, ऐसा नहीं है। तो वाणी पूरा नहीं पहुंच सकती है, पर यह शरीर मन संगात में कोई मैक्सिमम पहुंच सकता है, तो वो वाणी है। ये मन नहीं है, हम वाणी है जो एकदम ही करीब से ओम का वर्णन कर सकती है। तो ओम का वर्णन करने के लिए वाणी जब आगे बढ़ी, वाणी जब आगे चली, तो मैक्सिमम वर्णन कहां तक आके रुक गया? वाणी ने अंत में कहा क्या? कहा तो बोले ओम। वो जो अंतिम शब्द निकला वो ओम, वो जो शुरुआत का ब्रह्मा जी का शब्द निकला ओम तत्सद इति निर्देश्य, वही ओम। ये ओम का व्यवहार में भी उपयोग है। ओम जो है मंगल सूचक है, ओम जो है वो हकारात्मक रूप में भी दिया जाता है, ओम जो है वो नकार के रूप में भी, निषेध के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है? सम्मत के रूप में भी उपयोग किया जाता है, क्षमा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कोई अगर आप देरी से आए यहाँ, अभी प्रवचन खत्म होने के बाद कोई महात्मा को आप स्वामी जी को बोलते हैं कि भाई लेट हो गया, क्षमा करना, तो वो स्वामी जी क्या कहेंगे? आप गुरुजनों से सुनेंगे, वो ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, भाई क्या हो गया था, कहाँ गए थे, किसको मिले थे, ऐसा नहीं पूछते। वो क्या बोलते हैं? ओम। ये ओम से क्या है कि ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। माफ करने के बाद ओम कहते हैं कि ओम से मैं प्रार्थना भी करते, देखो ओम बहुत काम करते हैं, बहुत सारे काम ओम कर देता है। ओम कहने से मैंने आपकी बात सुनी, आपकी अपेक्षा क्या है कि मैं माफी दूं, ये ओम से माफी भी मिल गई। यही ओम से मैं प्रार्थना कर लेता हूं कि दोबारा आप जल्दी आओ, यही ओम से मैं प्रार्थना कर लेता हूं कि यहां आने के लिए जो जो कष्ट, जो जो प्रतिकूलता आपको आती है यहां नहीं आने के लिए, वो सब प्रतिकूलता है आपके जीवन में से निकल जाए। ये ओम शब्द से चार बातें हो गई। तो ये ओम शब्द व्यवहार में इतना सब कुछ कर देता है, तो परमात्मा क्या ना करेगा, ये तो ओम की परछाई है। हाँ, तो ये ओम बोल दिया तो बहुत कुछ हो जाता है। अब ये जो ओम है, वाणी की हम बात कर रहे थे कि अंत में कुछ बोलना है तो वो वाणी है, ये ओम है। अब आगे कहते हैं तस्य उपव्याख्यान, उपव्याख्यान ये निकट शब्द समझाने के लिए, उपव्याख्यान शब्द समझाने के लिए निकट की बात की निकटतम ये स्पष्ट है। अब कहते हैं क्या है तो बोले भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार एव, जो कुछ हो गया है हो रहा है और होने वाला है ये ओंकार है। यानी क्या, भूत भविष्य वर्तमान यानी जो भी वही व्यक्त है, ये पूरा जो जगत जो है जो भी व्यक्त है जो भी दिख रहा है जिसका विजृंभण हो रहा है वो ओंकार है। पर उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट के साथ हमें चलना है, क्यों, क्योंकि ये भूतम भवत भविष्यत ये जगत जो है वो ओंकार है, ये एक स्टेटमेंट हुआ। अब ये भी है ना, उसकी भी बात यही की गई है, क्या है, यच्च अन्यत इससे अन्यत, यानी भूत भविष्य वर्तमान से अन्यत, यानी जो जन्मा हुआ है जो आकार है जो विकारवान है जो मरण धर्मा है जो अनित्य है जो मर्यादित है जो परिवर्तनशील है उससे बराबर ऑपोजिट वो क्या है, तो बोले यच्च अन्यत त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। त्रिकालातीतम, त्रिकालातीतम यानी काल से भी जो पर है, जिसको अभिव्यक्त होने के लिए काल चाहिए, यानी वही वो परमात्मा, यानी वो अव्यक्त प्रकृति की यहाँ बात की है। शंकराचार्य जी ने यहाँ लिखा है अव्यक्त प्रकृति की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तीन पुरुष की बात, क्षर अक्षर उत्तम पुरुषोत्तम्य, उत्तम पुरुष क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, यहाँ तीन पुरुष की बात जहाँ की गई थी, यहाँ वैसे ही जो अव्यक्त प्रकृति है यानी अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये परमात्मा ही है, अव्यक्त नामनी ये प्रकृति यानी परमात्मा ही है, यही परमात्मा ओंकार से, ओंकार रूप अपने शक्ति से, ओंकार बीज है, बीजात्मक कहते हैं, ये ओंकार रूप बीज से भूत भविष्य वर्तमान निकाल लेते हैं। पर यही इनफ नहीं है, ओंकार में चौथी भी मात्रा है, और ओंकार में जो अव्यक्त मात्रा है वो क्या है, वो परमात्मा है। आपको बताना क्या है कि जो कुछ भी चीज है जो कुछ भी दिख रहा है कोई भी वस्तु है ना, वो अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकती, ये एक बात है, ये एक नियम देख लिया। दूसरी बात, जो भी कुछ दिख रहा है जो भी कुछ कल्पना है या ठोस भी दिख रहा है अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकती, तो अब थोड़ा आगे आप सोचिए कि अधिष्ठान और कहाँ और वस्तु और कहाँ रह सकती है, हाँ
नहीं।
चलो ये मेरा ये दायां हाथ है वो अधिष्ठान है ये पेपर वेट के लिए, तो मैं कब कह सकती हूँ कि दायां हाथ पेपर वेट का अधिष्ठान है, ये अलग हो सकता है, सुनिए बराबर ध्यान, अलग नहीं हो सकता ना, अधिष्ठान और आधार अलग हो सकता है या नहीं,
नहीं
नहीं हो सकता है ना, तो जहाँ अधिष्ठान है वहीं उसका आधेय है, हाँ, और जहाँ आधेय है अधिष्ठान के साथ साथ लेके घूमता है, बस इतना ही आपको चाहिए बताना कि ये भूतम भविष्य और वर्तमान जो है पूरा जगत प्रपंच जो है ये सब कुछ जो है वो अपने अधिष्ठान को साथ में लेके घूमता है। अगर ओंकार में, अगर ओंकार भूत भविष्य वर्तमान है तो ओंकार के भीतर उसका अधिष्ठान भूत भविष्य वर्तमान के साथ साथ चल रहा है, और वो जो अधिष्ठान जो साथ चल रहा है ओंकार का वही उसकी चौथी मात्रा, वही तुरीय है, वही बताना है, कोई अलग नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और कहीं नहीं है। आधार जो आधेय है जो जिसका सहारा लेकर चलता है वो उसके सहारे के साथ ही बंदा होता है, इनफैक्ट बहुत ही बंदा होता है, अटैच होता है। पानी में डूबेंगे तो पता लगेगा, कोई नहीं डूबने वाला, डूबेंगे तो पता लगेगा कि जब कोई लकड़ी फेंक देता है फ्लोट फेंक देता है तो वो फ्लोट को आप कैसे पकड़ लेते हैं, वो आधार को कैसे पकड़ लेते हैं, एक जान कर लेते हैं, यही परमात्मा है, यही आधार है, अब इसे नहीं छोड़ूंगा, तरण का उपाय है। ऐसे ही ये शरीर मन बुद्धि का जो अहम अहमतया भाव है उसके तरण का उपाय क्या है, आधार क्या फेंकते हैं उपनिषद, तो आधार बोली दिया, ओम आपको दे दिया है, अब तर जाओ, ये आधार को पकड़ लो, हाँ आधार और आधेय एक ही है, अगर मेरा ये शरीर मन बुद्धि का संगात है तो उसका कुछ तो आधार होगा ना, वो ऐसे ही तो नहीं टिक सकता है, हमेशा वी आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट अपॉन दी अधिष्ठान आधार. तो आधार और अधिष्ठान साथ साथ ही होते हैं और ये दोनों का ऐक्य अपनी बुद्धि से कहाँ दिखता है. देखिए आत्मा पूरा अधिष्ठान है और ये जगत प्रपंच जो है वो पूरा उसके ऊपर आधेय है, आधार है. भ्रांति कल्पना वो अलग बात है पर है तो सही ना. और अधिष्ठान और ये दृश्य प्रपंच हमें दिख नहीं रहा है. हमारी मति कहाँ, हम स्विच ऑफ हो जाते हैं, प्रवचन तो सुनते हैं पर हम बुद्धि को क्यों कब बंद करते हैं. तकलीफ कहाँ हो जाती है कि भाई आप जगत को पूरा आत्मा को जगत का अधिष्ठान बता रहे हैं ना, तो हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते. इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन कि यह कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल. इसीलिए ओम को ले आए कि ओम एक ऐसा उच्चारण है, ओम एक ऐसा माध्यम है जहां शास्त्र ये दोनों को बता सकता है. किसको? आधेय को और आधार को. इसको शास्त्र की परिभाषा में वाच्य और वाचक कहते हैं. तो दोनों को, अधिष्ठान और आरोप को एक एक ही जगह पे बता सकने की कोई की शक्ति है तो वो ओमकार की है और इसीलिए ओम को माध्यम बनाया हुआ है. तो ओम में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो है, भूत, भविष्य, वर्तमान में ये तीनों जो है, जो व्यक्त जो है वो आपको बताएंगे. कैसे बताएंगे? तो अकार, उकार और मकार की उसकी जो संज्ञा है वो तीन से बता देंगे. पर ओमकार की चौथी जो संज्ञा है, तुरीय जो संज्ञा है, वो तुरीय संज्ञा को आप कैसे बताएंगे? तुरीय संज्ञा का कोई इलाज है या नहीं? बोले ये जो अव्यक्त है तदपि ओंकार एव, वो भी ओंकार के भीतर है. पर वो बताने के लिए ओम का जब उच्चारण होता है, ओम का जब आपने उच्चारण किया, अब आप सब कुछ, सब विचार बाजू पे रख के आंख बंद कर दीजिए, सब आंखें बंद कर दीजिए. कोई घड़ी पे तो, घड़ी पे तो देखना ही नहीं, मैं देख रही हूँ. आंखें शांति से बंद कर दीजिए, एक हाथ दूसरे हाथ में उंगलियां इंटरलॉक कीजिए, मैं उच्चारण करूं उसके बाद आप उच्चारण कीजिए. जब आप ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका ध्यान मात्र आपसे उच्चारित जो ध्वनि प्रकट हो रहा है, उच्चारित जो ध्वनि प्रकट हो रहा है उसी के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा. ओ फिर से मेरा ध्यान ध्वनि के ऊपर ही रहेगा. ओ अब मेरे ध्यान का विषय ओमकार के ध्वनि के बाद जो भी क्षण है, अब मेरा ध्यान ध्वनि से हटके, ध्वनि खत्म होने के बाद मेरा ध्यान शुरू होगा. जो ध्यान, मन की जो वृत्ति ध्वनि सुनने में मैंने लगाई, अब वही वृत्ति वहां से हटा के ध्वनि के बाद ध्यान लगाना शुरू करेगी. ओ ओ अब ध्यान करो। ध्यान शुरू, आंखें बंद ही रख के सुनने का। ओम की ध्वनि का जब उच्चारण हुआ, अ उ और म शब्द का जन्म हुआ, उसकी स्थिति रही, उसका अंत रहा, उसके ऊपर ध्यान भी कर सके, मेरे ध्यान का विषय ये ध्वनि बन सका। अगर ये ध्यान का विषय बन सका, ये ध्वनि जो उत्पन्न हुआ, तो ये ध्वनि का कारण उसके साथ ही उत्पन्न होगा। ये ध्वनि का जो कारण है, जब तक ध्वनि सुनाई देती है तब तक वो कारण दिख नहीं रहा है। बैकग्राउंड में अगर शांति अशब्द नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई भी शब्द नहीं उठ सकेगा। कैनवास का जो कपड़ा है वो पूरा सफेद स्वच्छ नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई चित्र नहीं बन सकते, पर चित्र बनने के बाद कैनवास का सफेद रंग जो है अधिष्ठान दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार जब ध्वनि है तब अधिष्ठान नहीं है, वो अधिष्ठान को ढूंढने के लिए आपको बताया गया। ध्वनि खत्म होने के बाद जो आपने ध्यान दिया वही उसका अधिष्ठान है। ओम के बाद जो ओम के ध्वनि के बाद जो भी कुछ अनुभव हो रहा है वही ओम की चौथी तुरीय मात्रा, उसी का अधिष्ठान है। वो जो दो ओम के बीच में जो जगह है उसी का विश्लेषण ये शास्त्र कर रहे हैं। यही आत्मा की अनुभूति का विषय है, जिसकी चर्चा, जिसके ऊपर आप वाणी से कुछ भी बोल नहीं सकते, मन से विचार नहीं कर सकते, मात्र उसका अनुभव कर सकते हैं। पर माध्यम क्या लिया? ओम। किसका सहारा लिया? ओम। यही ओम में ये शब्द और अशब्द मिल सकता है। बिना ओम के उच्चारण, जो ओम के बाद की ध्वनि, जो ओम के बाद की शांति का अनुभव आपको करने के लिए बोला, बिना ओम उच्चारण किए आप उसे याद करने का प्रयत्न कीजिए। मात्र बिना ओम के उच्चारण वो अशब्द को पकड़ पाना करीबन नामुमकिन है। इसीलिए ओमकार के उच्चारण के बाद दो ओमकार के बीज की जगह का विश्लेषण करने के लिए ये ओमकार की सहायता ली जाती है। मैं यहाँ से शांति पाठ करूंगी, बाद ही आप आंख खोल सकते हैं, और ये प्रवचन के बाद कृपा करके कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा। शांति से आप अपने अपने कार्य में जा सकेंगे। फिर से एक बार मैं उच्चारण कराती हूँ, आप उच्चारण पे ही भी ध्यान दीजिए और उच्चारण के बाद की जो अवस्था है उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। अब आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं।